एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो अदृश्य है, लेकिन हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे ग्रह के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
हाँ, एक ऐसी दुनिया जो हर जगह है, यहां तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों की, मतलब माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी यानी कवक और प्रोटिस्ट।
हाँ,
और आज हमारी इस पड़ताल का आधार हैं निकोलस पी मणि की दो किताबें, माइक्रोबायोलॉजी द आर्किटेक्ट्स ऑफ लाइफ और माइक्रोबायोलॉजी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
अच्छा,
तो हम इन्हीं स्रोतों से जरूरी बातें निकालकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये नन्हे जीव आखिर इतने शक्तिशाली क्यों हैं और इनकी भूमिका क्या है।
हर कोई कर रहा है,
हाँ बिल्कुल,
या फिर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बढ़ती चुनौती।
सही बात है।
पर्यावरण की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से लेकर मिट्टी की सेहत तक, हर जगह इन सूक्ष्म जीवों का हाथ है। और भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे बायोटेक।
हाँ, वो तो काफी हद तक इन्हीं पर निर्भर है।
सही कहा। तो आज की ये चर्चा शायद हमारे आसपास की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे।
उम्मीद तो यही है, यही इन किताबों का एक बड़ा लक्ष्य भी है, हमें ये दिखाना कि हम जिस दुनिया को देखते हैं वो असल में एक बहुत बड़ी अदृश्य दुनिया पर टिकी है।
तो चलिए पहले जानते हैं इन विचारों के पीछे जो शख्स हैं उनके बारे में। निकोलस पी मणि, ये कौन है?
निकोलस पी मणि ओहायो की म्यामी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और खास तौर पर कवक विज्ञान, मतलब माइकोलॉजी के विशेषज्ञ माने जाते हैं।
माइकोलॉजी,
फंगस वाले? हाँ, फंगस वाले। उनके पास दशकों का रिसर्च अनुभव है, पीएचडी है, कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो है उनका अंदाजे बयान।
हाँ, मैंने भी सुना है कि वो मुश्किल साइंटिफिक बातों को भी कहानी की तरह बहुत ही रोचक और सरल भाषा में समझाते हैं।
बिल्कुल,
और वो भी साइंटिफिक एक्यूरेसी से समझौता किए बिना।
एग्जैक्टली, उनकी पिछली किताबें जैसे फंगस पर लिखी गईं, इसीलिए काफी पसंद की गईं। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक गाइड की तरह हमें इस अनदेखी दुनिया की सैर कराते हैं। और उनका नजरिया इसलिए भी अहम है क्योंकि वो सूक्ष्म जीव विज्ञान को सिर्फ फैक्ट्स और आंकड़ों का ढेर नहीं मानते।
अच्छा।
हाँ, बल्कि इसे जीवन के पूरे ताने बाने को समझने का एक जरिया मानते हैं। और क्योंकि वो फंगस के एक्सपर्ट हैं, तो उनकी बातों में हमें बैक्टीरिया और वायरस के अलावा इन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले जीवों के बारे में भी गहरी जानकारी मिलती है।
ये तो दिलचस्प है। तो इन किताबों का सेंट्रल आइडिया क्या है? मतलब वो एक बड़ी बात जो मानी हमें बताना चाहते हैं।
सेंट्रल आइडिया काफी क्रांतिकारी है। मानी कहते हैं कि ये सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ जर्म्स या रोगाणु समझकर डरते हैं,
हाँ हाँ,
असल में पृथ्वी पर जीवन की नींव रखने वाले और उसे चलाने वाले मुख्य आर्किटेक्ट्स यानी वास्तुकार हैं।
आर्किटेक्ट्स, वाह।
हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटिस्ट, यही हमारे ग्रह के असली मास्टर केमिस्ट, इंजीनियर और इवोल्यूशन के इंजन हैं। उनकी भूमिका सिर्फ बीमारी फैलाना नहीं बल्कि जीवन को संभव बनाना है।
ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है। मतलब ये किताबें इस आम धारणा को चुनौती देती हैं कि सूक्ष्म जीव सिर्फ हमारे दुश्मन हैं।
हाँ बिल्कुल, मानिए तर्क देते हैं कि हमारा पूरा दृश्यमान जगत, बड़े पेड़ पौधों से लेकर हम इंसानों तक, हमारी सभ्यता समेत सब कुछ इन न दिखने वाले जीवों की गतिविधियों पर ही निर्भर है।
बिल्कुल।
तो मुख्य सवाल जो ये किताबें उठाती हैं वो ये, इस सूक्ष्म दुनिया का असली पैमाना, शक्ति और महत्व क्या है।
अच्छा।
और ये हमारे ग्रह, हमारे शरीर और हमारे भविष्य को कैसे आकार देती हैं? ये हमारे मैक्रोसेंट्रिक यानी सिर्फ बड़ी चीजों पर ध्यान देने वाले नजरिए को सीधी चुनौती है।
समझ गई। तो इन किताबों का मकसद है आम लोगों को माइक्रोबायोलॉजी की बेसिक बातें समझाना और साथ ही इस अदृश्य दुनिया के विशाल पैमाने और महत्व के प्रति एक तरह का विस्मय, एक अचरज जगाना।
हाँ बिल्कुल, ये हमें सिखाती हैं कि इन छोटे जीवों की भूमिका को पहचानना कितना जरूरी है।
तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस अदृश्य ब्रह्मांड और सूक्ष्म जगत से जिसकी बात मणि करते हैं।
हाँ, वो बताते हैं कि इन सूक्ष्म जीवों की संख्या वो हैरान करने वाली है। और ये हर जगह हैं, गहरे समुद्र की तलहटी से लेकर हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों तक।
हर जगह?
हर जगह, खौलते गर्म पानी के झरनों से लेके बर्फ की मोटी चादरों के नीचे तक, सचमुच सर्वव्यापी।
और इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधों और जानवरों को मिला दें तो भी वजन और संख्या में ये सूक्ष्म जीव ही भारी पड़ेंगे।
हाँ, अविश्वसनीय है पर सच है। और इतिहास में झांके हैं तो वैन ल्यूएनहोक नाम के एक डच वैज्ञानिक ने 17वीं सदी में,
हाँ वो माइक्रोस्कोप वाले,
हाँ, अपने बनाए माइक्रोस्कोप से पहली बार इन एनिमलक्यूल्स यानी नन्हे जीवों को देखा था। वो तो बस शुरुआत थी। आज की आधुनिक तकनीकें जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग हमें इनकी अविश्वसनीय विविधता की एक झलक दे पा रही हैं। मनी जीवन को तीन मुख्य डोमेन या क्षेत्रों में बांटते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया।
आर्किया ये क्या है?
ये अक्सर बहुत ही एक्सट्रीम मतलब चरम वातावरण में पाए जाते हैं जहां जीवन मुश्किल लगता है। और तीसरा डोमेन है यूकेरिया।
यूकेरिया, इसमें हम भी आते हैं?
इसमें फंगस और प्रोटिस्ट जैसे सूक्ष्म जीव और हम जैसे जटिल जीव भी शामिल हैं। और हाँ, वायरस भी हैं, हालांकि उन्हें तकनीकी रूप से पूरी तरह जीवित नहीं माना जाता।
क्यों?
क्योंकि उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी मेजबान कोशिका मतलब होस्ट सेल की जरूरत होती है। वो अकेले कुछ नहीं कर सकते।
अच्छा, तो मूल बात यह है कि पृथ्वी असल में सूक्ष्म जीवों का ग्रह है। हम जो बड़ी दुनिया देखते हैं, पेड़ पौधे जानवर इंसान, वो सब तो इस सूक्ष्म जीवों की दुनिया के ऊपर बाद में विकसित हुई है।
बिल्कुल,
असली शासक तो ये नन्हे जीव हैं।
अच्छा, तो ये तो हुई इनकी मौजूदगी और विविधता की बात, पर ये सूक्ष्म जीव काम कैसे करते हैं, मतलब इनकी मशीनरी कैसे चलती है?
हाँ, ये और भी दिलचस्प है। देखिए, इनकी कोशिकाओं की बनावट अलग अलग होती है। बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोटिक होते हैं।
प्रोकैरियोटिक
मतलब?
मतलब इनकी कोशिकाओं में एक झिल्ली वाला न्यूक्लियस नहीं होता, सब कुछ साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, थोड़ा सरल स्ट्रक्चर।
ओके।
जबकि फंगस, प्रोटिस्ट और हम जैसे जीवों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, जिनमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और दूसरे अंगक मतलब ऑर्गेनेल्स होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स। लेकिन मनी जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यानी चयापचय विविधता। ये इनकी असली सुपर पावर है।
मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्या मतलब?
सोचिए, हम इंसान ऊर्जा के लिए कुछ गिनी चुनी चीजें ही खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट।
हाँ,
पर सूक्ष्म जीव, अरे वो तो लगभग किसी भी चीज को पचाकर ऊर्जा बना सकते हैं। चीनी, धूप, सल्फर, लोहा, हाइड्रोजन गैस, मीथेन, अमोनिया, लिस्ट बहुत लंबी है।
कमाल है, मतलब जैसे हम सिर्फ पेट्रोल या डीजल से गाड़ी चला सकते हैं पर ये किसी भी फ्यूल से चल सकते हैं।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। यही विविधता उन्हें इस ग्रह का मास्टर रिसाइक्लर बनाती है।
रिसाइक्लर?
हाँ, वो उन सभी जरूरी रासायनिक तत्वों का चक्र चलाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, जिन पर बाकी सारा जीवन निर्भर करता है। उनके बिना ये साइकल्स रुक जाएंगे, सब ठप हो जाएगा।
बाप रे, ये तो बहुत जरूरी काम हुआ।
बिल्कुल। और एक और बात जो इन्हें खास बनाती है वो है इनका तेजी से बदलना और अडाप्ट करना। ये बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं।
हाँ।
और उससे भी बड़ी बात, ये आपस में डीएनए के टुकड़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या एचजीटी कहते हैं।
हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ये कैसे होता है?
ये ऐसा है मानो आप अपने दोस्त से सीधे कोई स्किल सीख लें बिना पेरेंट्स से इनहेरिट किए।
अच्छा।
इसी एचजीटी की वजह से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ रेजिस्टेंस जैसी क्षमताएं बहुत तेजी से आपस में फैला लेते हैं।
ओहो, तभी ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गया है।
एग्जैक्टली। ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और वो एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया जो खौलते पानी या गहरे समुद्र की खाइयों जैसी जगहों पर पनपते हैं।
हाँ हाँ।
वो भी इनकी जबरदस्त अडेप्टेशन क्षमता का ही नतीजा है।
लेकिन हम अक्सर सूक्ष्म जीवों को सिर्फ बीमारियों से जोड़कर देखते हैं, तो चलिए अब उस पहलू पर आते हैं, वायरल दुनिया और बुरे सूक्ष्म जीव।
हाँ, वो भी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। वायरस, जिनकी बनावट बहुत सरल होती है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का खोल, बहुत चालाकी से मेजबान कोशिकाओं पर कब्जा करते हैं और उन्हें अपनी कॉपी बनाने वाली फैक्ट्री बना लेते हैं।
अच्छा।
और कुछ बैक्टीरिया और फंगस भी हैं जो रोग पैदा करते हैं, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, जैसे टीबी फैलाने वाला बैक्टीरिया,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस,
हाँ, या एड्स फैलाने वाला एचआईवी वायरस, या स्किन इन्फेक्शन करने वाला कैंडिडा फंगस।
और यहीं पर जर्म थ्योरी का जिक्र आता है ना, लुई पैस्चर और रॉबर्ट कोच जैसे वैज्ञानिकों ने।
हाँ, 19वीं सदी में उन्होंने साबित किया कि कई बीमारियां इन सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। इस खोज ने तो मेडिसिन में क्रांति ला दी।
और इसी समझ से एंटीबायोटिक्स और टीके मतलब वैक्सीन्स विकसित हुए।
बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, जो खुद एक फंगस से मिलती है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ किसी जादू की तरह काम करती थी।
हाँ थी।
हाँ थी। और टीके हमें वायरस और कुछ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, यहाँ एक बड़ी चेतावनी है।
वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस।
हाँ, इसका बढ़ता संकट। हमने एंटीबायोटिक्स का इतना ज्यादा और कई बार बेवजह इस्तेमाल किया है कि बैक्टीरिया ने उनके खिलाफ हथियार विकसित कर लिए हैं। अब सुपर बग सामने आ रहे हैं जिन पर हमारी दवाएं बेअसर होती जा रही हैं।
सुपर बग्स, ये तो डरावना है।
है, मनीष पर बहुत जोर देते हैं कि यह एक गंभीर वैश्विक चुनौती है, हमें बहुत संभल कर चलना होगा।
ये तो वाकई चिंता की बात है, लेकिन क्या सारे सूक्ष्म जीव बुरे ही होते? मनी की किताबों का मुख्य तर्क तो यही है कि ऐसा नहीं है।
हाँ बिल्कुल नहीं। तो अब बात करते हैं कवक जगत और अच्छे सूक्ष्म जीवों की।
बिल्कुल।
और अच्छी खबर ये है कि अधिकांश सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं बल्कि फायदेमंद या न्यूट्रल होते हैं। कवक, फंजाय यानी फफूंद, यीस्ट, मशरूम वगैरह, ये यूकेरियोटिक जीव हैं। प्रकृति में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। ये मुख्य रूप से अपघटक डीकम्पोजर्स का काम करते हैं।
डीकम्पोजर्स मतलब सड़ाने गलाने वाले।
हाँ, मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को सड़ा गलाकर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाते हैं।
इनके बिना जंगल कचरे के ढेर बन जाएंगे,
पोषक तत्व लॉक हो जाएंगे।
अरे वाह। और मनी जो खुद माइकोलॉजिस्ट हैं, माइकोराइजा के बारे में बताते हैं, ये क्या चीज है?
माइकोराइजा कवक और पौधों की जड़ों के बीच एक अद्भुत पार्टनरशिप या सहजीवन है।
पार्टनरशिप? कैसी पार्टनरशिप?
कवक अपनी पतली धागों जैसी संरचना हाइफी से मिट्टी में दूर दूर तक फैलकर पौधे के लिए पानी और पोषक तत्व खासकर फास्फोरस सोखते हैं।
अच्छा।
और बदले में पौधा उन्हें अपने बनाए भोजन मतलब शुगर में से हिस्सा देता है। विन विन सिचुएशन।
वाह।
ये साझेदारी इतनी आम और जरूरी है कि लगभग 90% पौधे इसी पर निर्भर करते हैं। इसे कभी कभी मजाक में वुड वाइड वेब भी कहा जाता है।
वुड वाइड वेब जैसे इंटरनेट।
हाँ, क्योंकि ये कवक जंगल में पेड़ों को आपस में जोड़ सकते हैं, एक तरह का भूमिगत नेटवर्क बनाते हैं जिससे वो आपस में सिग्नल और पोषक तत्व भी शेयर कर सकते हैं।
ये तो कमाल है, प्रकृति का अपना इंटरनेट कनेक्शन। और हमारे शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या? मानव माइक्रोबायोम।
हाँ, मानव माइक्रोबायोम आजकल बहुत चर्चा में है। हमारा शरीर, खासकर हमारी आंतें, खरबों सूक्ष्म जीवों का घर है।
खरबों मतलब ट्रिलियंस।
हाँ, हमारी अपनी कोशिकाओं से ज्यादा तो इनकी कोशिकाएं हैं हमारे अंदर, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी काम करते हैं। खाना पचाने में मदद करते हैं, जरूरी विटामिन जैसे विटामिन के और B12 बनाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देते हैं, और हमें हानिकारक रोगाणुओं से भी बचाते हैं।
तो हम अकेले नहीं हैं?
बिल्कुल नहीं। मनी कहते हैं कि हम अकेले इंसान नहीं बल्कि एक चलते फिरते इकोसिस्टम है। हमारा स्वास्थ्य काफी हद तक इन साथी सूक्ष्म जीवों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।
तो गट हेल्थ इतनी जरूरी क्यों है, ये अब समझ आ रहा है। पारिस्थितिकी में इनकी और क्या भूमिकाएं हैं?
बहुत बड़ी भूमिकाएं। पोषक तत्वों का चक्रण मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एक अहम काम है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन।
नाइट्रोजन फिक्सेशन,
हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को पौधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ खास बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को अमोनिया जैसे कंपाउंड्स में बदलते हैं जिसे पौधे सोख सकते हैं।
ओह, तो खेती के लिए जरूरी है ये?
जीवन के लिए अनिवार्य है।
अब आते हैं प्रोटिस्ट विविधता और सूक्ष्म पारिस्थितिकी विकास पर। प्रोटिस्ट क्या होते हैं, ये नाम काम सुना है?
प्रोटिस्ट असल में एकल कोशिका वाले यूकैरियोट्स की एक बहुत ही विविध दुनिया है। थोड़ी कैच ऑल कैटेगरी है ये।
अच्छा।
जैसे इसमें शैवाल आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पानी में ऑक्सीजन बनाते हैं, अमीबा जैसे जीव आते हैं जो दूसरों को खाते हैं, और भी बहुत तरह के जीव शामिल हैं। पानी वाले इकोसिस्टम में जैसे समुद्रों और झीलों में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर फूड चेन की शुरुआत में।
और ये सूक्ष्म जीव अकेले अकेले नहीं रहते हैं ना, ये कम्युनिटीज में रहते हैं।
बिल्कुल, ये जटिल समुदायों में रहते हैं, माइक्रोबियल कम्युनिटीज। इनमें ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कभी कम्पीट करते हैं भोजन या जगह के लिए, तो कभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं।
सहयोग भी करते हैं?
हाँ, कुछ बैक्टीरिया तो कोरम सेंसिंग नाम की प्रक्रिया से आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं ताकि मिलकर कोई काम कर सकें, जैसे बायोफिल्म बनाना।
वाह, आपस में बात भी करते हैं। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इन सूक्ष्म जीवों ने पृथ्वी के विकास को कैसे आकार दिया। मनी इस बारे में क्या कहते हैं?
ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें पहले ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते थे।
हाँ, सुना है इनके बारे में।
अरबों साल पहले इन्हीं साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करना सीखा, मतलब सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाना, और सबसे जरूरी ऑक्सीजन गैस छोड़ना।
ऑक्सीजन?
हाँ, धीरे धीरे इन्होंने हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन भरना शुरू किया। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं।
और इसी ऑक्सीजन ने हम जैसे जटिल हवा में सांस लेने वाले जीवों के विकास का रास्ता खोला।
ठीक यही, ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी, और इसे अंजाम दिया इन नन्हे सूक्ष्म जीवों ने।
कमाल है।
मनी कहते हैं कि जीवन का इतिहास काफी हद तक सूक्ष्म जैविक नवाचार की कहानी है, जिसमें कभी कभी स्थूल विस्तार होते हैं।
क्या मतलब हुआ इसका?
मतलब ज्यादातर बड़े बदलाव, बड़े इनोवेशंस सूक्ष्म जीवों ने किए। हम जैसे बड़े जीव तो बस उस कहानी के बाद के अध्याय हैं जो उन इनोवेशंस पर बने हैं। हमारी अपनी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति भी शायद एंडोसिम्बायोसिस से हुई।
एंडोसिम्बायोसिस?
हाँ, एक थ्योरी है कि एक बड़ी कोशिका ने एक छोटी बैक्टीरिया जैसी कोशिका को निगल लिया और वो मरने के बजाय अंदर रहकर काम करने लगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बन गई।
वाह, ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने ज्यादा इन पर निर्भर हैं और हमारा इतिहास कितना गहरा उनसे जुड़ा है।
बिल्कुल।
अब बात करते हैं कि हमने इन सूक्ष्म जीवों की शक्ति का इस्तेमाल कैसे सीखा है। अनुप्रयुक्त सूक्ष्म जीव विज्ञान, या जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं।
हाँ, इंसान हजारों सालों से अनजाने में ही सही सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करता आया है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन सबसे पुराना उदाहरण है।
फर्मेंटेशन, जैसे दही, इडली।
हाँ, ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट एक तरह का फंगस का इस्तेमाल, दूध से दही या पनीर बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल, अंगूर से शराब या जौ से बियर बनाने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल, ये सब सूक्ष्म जीवों की ही देन है।
और आधुनिक जमाने में
आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी ने तो कमाल ही कर दिया है। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन फंगस की मदद से होता है। उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले कई एंजाइम्स, जैसे डिटर्जेंट पाउडर में दाग हटाने वाले एंजाइम, बैक्टीरिया या फंगस से बनाए जाते हैं। बायोफ्यूल्स बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग हो रहा है।
और दवाएं बनाने में भी, जैसे वो इंसुलिन वाला उदाहरण।
हाँ बिल्कुल, मधुमेह के मरीजों के लिए इंसुलिन आजकल जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड ई कोलाई बैक्टीरिया से बनवाया जाता है।
ई कोलाई, ये तो वही बैक्टीरिया है जो कभी कभी फूड पॉइजनिंग करता है।
हाँ वही, ये अच्छा बनाम बुरा वाली बात का एक और उदाहरण है। ई कोलाई की कई किस्में हैं। एक किस्म हमारे लिए इंसुलिन बनाती है, दूसरी हमारी आंत में विटामिन बनाती है, और कुछ किस्में बीमारी पैदा कर सकती हैं, खासकर अगर वो गलत जगह पहुंच जाएं।
अच्छा, तो लोकेशन और स्ट्रेन बहुत मैटर करता है।
बिल्कुल। और तो और, पर्यावरण की सफाई यानी बायो रेमेडिएशन में भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है, जैसे तेल रिसाव को साफ करने के लिए खास तरह के बैक्टीरिया का उपयोग करना।
और अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर जैसी नई तकनीकें आ गई हैं। क्रिस्पर के बारे में थोड़ा और बताएं, ये बहुत सुनने में आता है।
क्रिस्पर असल में बैक्टीरिया का अपना डिफेंस सिस्टम है वायरसों से बचने के लिए। वैज्ञानिकों ने इसी सिस्टम को समझकर एक शक्तिशाली जीन एडिटिंग टूल बना लिया है।
जीन एडिटिंग टूल?
हाँ, इससे हम सूक्ष्म जीवों और दूसरे जीवों के भी डीएनए को बहुत सटीक तरीके से बदल सकते हैं, जैसे किसी टेक्स्ट एडिटर में टाइपो ठीक करना। ये भविष्य में बीमारियों के इलाज से लेकर नए बायो प्रोडक्ट्स बनाने तक कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।
ये तो बहुत शक्तिशाली तकनीक लगती है।
है, और इसीलिए इसकी नैतिक पहलुओं पर भी काफी बहस चल रही है।
समझ सकती हूँ। तो इन सारी बातों से, मनी की किताबों से, क्या मुख्य विषय वस्तु या संदेश उभर कर आते हैं? अगर हमें कुछ टेकअवेज याद रखने हो तो वो क्या होंगी?
सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, सूक्ष्म जीवी प्रभुत्व और सर्वव्यापकता। हमें ये मानना होगा कि संख्या, वजन और प्रभाव के मामले में सूक्ष्म जीव ही इस ग्रह पर हावी हैं।
हाँ, हमारा इंसान केंद्रित नजरिया अधूरा है।
बिल्कुल, हम उनके ग्रह पर रहते हैं, वो हमारे पर नहीं। वो हर जगह हैं, हवा, पानी, मिट्टी, हमारे अंदर, हमारे ऊपर।
दूसरा, उनका विकासवादी महत्व। जैसा हमने बात की, जीवन के इतिहास में ज्यादातर बड़े इनोवेशंस
जैसे ऑक्सीजन वाला वायुमंडल या हमारी अपनी कोशिकाओं की उत्पत्ति,
हाँ, वो सब सूक्ष्म जीवों की ही देन है। हम उनके अरबों साल के सफर का एक छोटा सा हिस्सा हैं। मनी का वो कथन याद आता है, जीवन का इतिहास काफी हद तक सूक्ष्म जैविक नवाचार की कहानी है।
बिल्कुल। तीसरा, पारिस्थितिक अंतर संबंध। सब कुछ जुड़ा हुआ है। इकोसिस्टम का संतुलन, मिट्टी की सेहत, पानी की शुद्धता, पोषक तत्वों का चक्र, सब कुछ सूक्ष्म जीवों पर टिका है।
और हमारा अपना स्वास्थ्य भी हमारे माइक्रोबायोम पर निर्भर है। स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ भोजन और स्वस्थ आंत से स्वस्थ शरीर।
हाँ, ये कनेक्शन बहुत गहरा है।
चौथा, अच्छा बनाम बुरा के द्वंद्व से परे देखना। ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक है।
सही बात, कोई सूक्ष्म जीव हमेशा अच्छा या बुरा नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। ई कोलाई का उदाहरण हमने देखा। हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा, न कि हर अनदेखे जीव को दुश्मन मान लेना।
और मनी का वो विचार यहाँ बहुत सही लगता है, सूक्ष्म जीव जीवन के दुश्मन नहीं है, वही जीवन है।
बिल्कुल, ये नजरिए को बदलता है। और पांचवा, मानव निर्भरता और प्रौद्योगिकी का दोहरा पहलू। हम भोजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, हर चीज के लिए सूक्ष्म जीवों पर निर्भर हैं। बायोटेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके खतरे भी हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है।
हाँ,
हमें सूक्ष्म जीवों के साथ समझदारी और सम्मान से पेश आना होगा। यहाँ मनी की चेतावनी याद आती है, एंटीबायोटिक दवाओं ने हमें सूक्ष्म दुनिया पर झूठा एहसास दिया है, एक ऐसी जीत जो न तो कभी प्राप्त करने योग्य थी और न ही वांछनीय।
ये तो सोचने वाली बात है। ये युद्ध नहीं, संतुलन बनाने का मामला है।
बिल्कुल,
ये सभी बहुत महत्वपूर्ण संदेश हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान को समझना केवल छोटी चीजों को समझने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि छोटी चीजें बड़ी चीजों को कैसे संभव बनाती हैं।
सटीक कहा। तो अब सवाल उठता है कि इस सारी जानकारी का हमारे वास्तविक जीवन में क्या अनुप्रयोग हो सकता है? हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं?
व्यक्तिगत स्वास्थ्य के स्तर पर देखें तो शायद हमें वो जो अत्यधिक सफाई का जुनून है, थोड़ा उस पर सोचने की जरूरत है।
हाँ, हर चीज को एंटीबैक्टीरियल से साफ करना शायद ठीक नहीं।
हाँ, शायद वो हमारे फायदेमंद माइक्रोबायोम को भी नुकसान पहुंचाता हो। एंटीबायोटिक्स तभी लें जब डॉक्टर कहे और वाकई जरूरी हो, और अपने खाने पीने में विविधता लाना।
हाँ, खासकर पारंपरिक फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, छाछ, अचार, कांजी, इडली, डोसा वगैरह।
हाँ, वो हमारे गट माइक्रोबायोम के लिए अच्छे हो सकते हैं।
भोजन और बागवानी में भी इसका महत्व है। घर पर अचार डालना या दही जमाना जैसी पारंपरिक फर्मेंटेशन प्रक्रियाओं के पीछे के विज्ञान को समझना रोचक हो सकता है। और अगर बागवानी करते हैं तो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझना और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करना मिट्टी की सेहत और पौधों के लिए फायदेमंद हो सकता है। कॉम्पोस्ट खाद बनाना एक अच्छा तरीका है।
सही कहा। और पर्यावरण के प्रति हमारा नजरिया भी बदल सकता है। ये समझना कि मिट्टी और पानी को साफ और स्वस्थ रखने में ये छोटे जीव कितने महत्वपूर्ण हैं।
हाँ, कचरा प्रबंधन में उनकी भूमिका को पहचानना, जैसे कॉम्पोस्टिंग, वे पोल्यूशन कंट्रोल में भी मदद कर सकते हैं। उनके बिना हमारा ग्रह रहने लायक नहीं रहेगा।
और बड़ी तस्वीर देखें तो जैसे महामारियां कैसे फैलती हैं, वायरस और बैक्टीरिया कैसे बदलते हैं, मतलब म्यूटेट करते हैं।
हाँ, उसे हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को सिर्फ अपनी या अपने डॉक्टर की समस्या न मानकर एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के रूप में देखना।
और जिम्मेदाराना व्यवहार करना, जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना, बेवजह न लेना।
बिल्कुल। और जब हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं तो हमें सिर्फ बाघों और पेड़ों के बारे में नहीं,
हाँ,
बल्कि सूक्ष्म जीवों की इस विशाल और अनदेखी विविधता के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसे बचाना जरूरी है।
सही।
तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि हम इंसान इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं। हम एक विशाल, अदृश्य और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सूक्ष्म दुनिया के भीतर रहते हैं और उसी पर पूरी तरह निर्भर हैं।
एकदम, हमारा अस्तित्व उनसे अभिन्न रूप से जुड़ा है।
और हमें उनके साथ दुश्मनी, ये अज्ञानता का नहीं बल्कि साझेदारी और समझ का रिश्ता बनाना होगा।
हाँ, उनकी भूमिका को स्वीकार करना, उनका सम्मान करना और उनके साथ समझदारी से पेश आना, यही भविष्य का रास्ता है। जो चीजें दिखती नहीं वो महत्वहीन नहीं होती। ये अदृश्य दुनिया आश्चर्यजनक रूप से जटिल, परिष्कृत और सुंदर है। बिल्कुल। और एक विचार जो शायद हमारे श्रोताओं के साथ रह जाए, अगर हम इन अदृश्य सहयोगियों के साथ समझदारी से काम लेना सीख जाएं, तो भविष्य में हम मिलकर और क्या क्या हासिल कर सकते हैं। संभावनाएं तो अपार लगती हैं।
हाँ, बहुत संभावनाएं हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।